ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौधाम योजना का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने घरों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध ईंधन आपूर्ति का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने शासकीय महाविद्यालयों में 700 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौधाम योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आज बिलासपुर जिले के तकतपुर विकासखंड के ग्राम लाखासार और बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय स्थल उपलब्ध कराना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी गौधामों को सुरभि गौधाम का नाम देने की घोषणा की। योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 11 जिलों में 29 गौधामों का संचालन प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड के जोगीपुर गांव में राज्य के पहले गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास भी किया। इसे करीब 184 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।
आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में पशुपालन और विशेषकर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन में काफी अच्छा काम होगा। पहले तो हम लोग जानते थे खाली कंडा बनता था, लेकिन आजकल तो उससे कीटनाशक से लेकर गोबर गैस से लेकर आज टाइल्स और क्या क्या नहीं बन रहा है। आज भगवान की मूर्तियां तक गोबर से बन रही हैं। तो इस तरह से सैकड़ों तरह के उत्पाद बन रहे हैं गोबर से, और हमारे पशुपालक वास्तव में जो अन्नदाता है, किसान है, निश्चित रूप से उनकी आय को बढ़ाने में ये पशुपालन और ये गाय पालन बहुत ही सहयोगी होगा।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कृषि और पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने घरों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध ईंधन आपूर्ति का आश्वासन दिया है। रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 30% से अधिक की वृद्धि की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग थोड़ा धैर्य रखें और अफवाहों पर न जाएं। राज्य सरकार कालाबाजारियों पर ठोस कार्रवाई कर रही है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि प्रदेश भर में रसोई गैस की किल्लत शुरू हो गई है। आम आदमी परेशान है, लेकिन सरकार जमीनी हकीकत को मानने को तैयार नहीं है। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार ने अचानक कमर्शियल गैस की आपूर्ति पर अघोषित तौर पर रोक लगा दी है, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं पार्टी के प्रभारी मंत्री मलकीत सिंह गैदू ने बताया कि कांग्रेस आगामी 17 मार्च को गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी, मनरेगा बचाओ संग्राम और प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। राज्य सरकार ने शासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के 625, ग्रंथपाल के 50 तथा क्रीड़ा अधिकारी के 25 सहित कुल 700 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर और विषयवार रिक्त पदों को निर्धारित करते हुए उनका विस्तृत रोस्टर ब्रेकअप भी तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामले, चेक बाउंस, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण और आबकारी से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। इसके अलावा बैंक, विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे तथा वारिसों के मध्य बंटवारे का भी निराकरण हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा विजन 2030 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के लिए उच्च विकास व्यवसाय मॉडल का निर्माण विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यशाला में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। वन विकास निगम के प्रबंध संचालक प्रेम कुमार ने इस कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया।
का राजस्व कैसे हो, इस पर हम लोग पूरा विचार विमर्श कर रहे हैं इस कार्यशाला में। इस कार्यशाला में हम लोग एक इंटरैक्टिव है, एक एक्सपीरियंस शेयरिंग है कि अन्य कंट्रीज के अन्य वन विकास निगमों में क्या काम हो रहा है, उनके क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं। इस प्रकार एक हम लोग इंटरैक्टिव बातचीत से आगे की रणनीति बनाएंगे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से राजनांदगांव के लिए 226 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव में 2000 सीटर का विशाल अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, जो संस्कारधानी की कला, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को नया मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस साल के बजट में राजनांदगांव जिले के समग्र विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से आयोजित आदि पर्व कल से नवा रायपुर में शुरू हो गया है। इस पर्व का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने किया। 2 दिवसीय इस उत्सव में छत्तीसगढ़ सहित तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड के आदिवासी लोक कलाकार शामिल हो रहे हैं। आदि पर्व की थीम परंपरा से पहचान तक रखी गई है। शुभारंभ के अवसर पर जनजाति समाज के युवाओं ने रैंप पर आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर जनजाति समाज के खानपान, वेशभूषा और विभिन्न कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही चित्रकला महोत्सव और आदि हाट जनजाति शिल्प मेला भी लगाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति हस्तशिल्प, वनोपज और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आदि पर्व का समापन समारोह अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल सर्वसम्मति से एक अशासकीय संकल्प पारित किया गया। इस संकल्प में केंद्र सरकार से दुर्ग जिले के सेक्टर 9 भिलाई में स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में पुनः स्थापित करने की सिफारिश की गई है। ये अशासकीय संकल्प वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ऋकेश सेन ने पेश किया था। कोंडागांव जिले के नवागढ़ क्षेत्र में उपलब्ध प्राचीन प्रतिमाओं और पुरातात्विक अवशेषों का विशेषज्ञ दल अध्ययन करेगा, साथ ही स्थल निरीक्षण और विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि नवागढ़ क्षेत्र में 5वीं और 6वीं शताब्दी से संबंधित प्राचीन प्रतिमाओं और अन्य अवशेषों की जानकारी सामने आने के बाद स्थल का वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी हो गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेषज्ञ दल द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध सभी प्रतिमाओं, स्थापत्य अवशेषों, शिल्प कलाकृतियों और संभावित पुरातात्विक स्थलों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तथा उनका विस्तृत दस्तावेजीकरण भी हो, ताकि इन धरोहरों को ऐतिहासिक महत्व का समुचित आकलन किया जा सके। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में दुर्ग जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने, गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के मध्य भाग से अंदरूनी ओडिशा तक छत्तीसगढ़ होते हुए एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके असर से बदली बारिश की संभावना बन रही है। वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा, साथ ही सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर में टीजेएसवी सहकारी बैंक की रायपुर शाखा का शुभारंभ किया। बीजापुर जिले में फरसेगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़े गुंडे में नवीन सुरक्षा और जनसुविधा कैंप की स्थापना की गई है और छत्तीसगढ़ राज्य क्षमता निर्माण क्रियान्वयन और समन्वय समिति की पहली बैठक आगामी 17 मार्च को रायपुर में आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौधाम योजना का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने घरों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध ईंधन आपूर्ति का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने शासकीय महाविद्यालयों में 700 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।